Olmadı ya, Metin bendesin ya, annen aşılı akı ya. Çak şırın oydan yine kesmeyi şey kuru beynim ha. Rey kuru. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hindi, no?
Yes.
Someone has to translate for him. You catch Hindi? He can translate. Giridhari Gopinath Prabhu. He can translate. You can translate. Giridhari. Can backside you can translate. यहाँ पर अभी दूसरा अध्याय चर्चा चल रहा है ना भगवद गीता का, तो आज हम लोग वो श्लोक नहीं लेंगे, आज हम लोग दुर्गा देवी के बारे में चर्चा करेंगे। भगवद गीता में भगवान अपने शिक्षाओं में देवी देवताओं का पूजा करना, वो पूजा करने के लिए निरुत्साहित करते हैं, और अपने लीलाओं में भी हम लोग देखते हैं सभी ग्वाल बाल, सभी ग्वाल वो गोपगण वो इंद्र का पूजा करना चाहते थे, भगवान उसको भी निरुत्साहित किया, इसलिए वो आप जानते हैं गोवर्धन लीला भी हुआ ना, और भगवान जो इंद्र की कोप से ब्रजवासियों को रक्षा करने के लिए वो गोवर्धन उन्होंने उठाया, उन्होंने तो उनका नाम हो गया गिरिधारी, है ना। तो ऐसे भगवान अपने लीलाओं में और उनकी शिक्षा भगवद गीता में दोनों जगह पर देवी देवताओं का उपासना करना या पूजा करना उसको निरुत्साहित किए हैं। देवी देवताओं का पूजा करने के लिए कोई आध्यात्मिक कोई कारण नहीं है, तो इसका अर्थ है कि देवी देवताओं का उपासना करने से हमें कोई मुक्ति नहीं मिलने वाला है, ना ही हमारा कोई उनका आध्यात्मिक संबंध है। वो भी वो क्या है, भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं, वो लोग बोलते भगवान बोलते हैं कि यह देवता, ये वो देवी देवता ये लोग भी क्या है, इस भौतिक जगत के है, तो कर्म कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्विंदति मानवाः। अपने कर्मों में या जो लोग कर्मकांड करते हैं, जो वेदों में दिए गए अलग अलग अनुष्ठानों को पालन करते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का वो उपासना करते हैं, और वो बहुत ही जगत के ये देवी देवताएँ हैं, तो उनमें वो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो ये भौतिक कारण है, तो कोई आध्यात्मिक कारण नहीं है, तो ना ही हमारा हम वास्तविक संबंध आध्यात्मिक संबंध है देवी देवताओं से। तो जैसे भगवान के साथ हमारा कोई संबंध है शाश्वत नित्य संबंध, अभी हम उसको भूल गए, तो हमारा कोई संबंध नहीं है। और ये देवी देवताओं का उपासना वो वेद शास्त्रों में तो बताया गया है, लेकिन वो प्रमुख नहीं है। सभी अंत में सभी वेद शास्त्र भगवान कृष्ण या भगवान हरि का गुणगान करते हैं। वेदे नारायणे वेदे रामायणे चैव पुराणे भारत तथा आदो अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद पुराण रामायण महाभारत सब आरंभ में मध्य में अंत में भगवान हरि का गुणगान करते हैं, तो ये हरिवंश पुराण में ऐसे बताया गया, और अन्य जगह पर भी भगवान स्वयं भगवान भी बोलते हैं वेदेश सर्वे रामेव वेद्यो, वेदों से मुझे ही जानना है, वेद्यम पवित्रम ओंकार रक्षाम यजुरेव छ, तो मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ, वेदों का लक्ष्य हूँ ऐसे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण वेद के उद्देश्य है, फिर भी ये वेदों में जो इधर उधर थोड़ा बहुत ये देवी देवताओं का उपासना के बारे में वो उपासना कांड है ना, वेदों में तीन कांड है, कर्म कांड उपासना कांड और ज्ञान कांड, तो उपासना कांड में और कर्म कांड में ऐसे थोड़ा देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो वो उसको ज़्यादा जोर देकर ये भारत में विशेष करके लोग ज़्यादा देवी देवताओं को उपासना करना शुरू कर दिया। ये भी वैदिक सभ्यता का पतन का एक कारण है, प्रमुख कारण है ये। तो जब देवी देवताएं प्रमुख बन जाते हैं, भगवान कृष्ण को क्या कर देते हैं, उनको साइड में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, बाजू में रख देते हैं, तो वैदिक सभ्यता का पतन हो जाता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वैदिक सभ्यता में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जोर दिया गया। जब अब देवी देवताओं का उपासना करने का उद्देश्य है भौतिक चीज़, भौतिक लाभ प्राप्त करना, तो भौतिक लाभ जीवन का उद्देश्य हो गया तो कोई धर्म को क्या नहीं कर सकते हैं, तो बना के नहीं रख सकते। तो सब लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, कोई धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो धर्म पालन करने के लिए भी थोड़ा बहुत अनासक्ति होने का ज़रूरत होता है। हालांकि धर्म का पालन करने का एक उद्देश्य है कि काम को पूर्ति करने के, इंद्र तृप्ति को पूरा करने। धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे। तो लेकिन फिर भी अंत में मोक्ष की ओर जाने के लिए धर्म प्रेरित करता है। तो जब देवी देवताओं का उपासना ज़्यादा बढ़ जाता है, धर्म तभी बना के रखेंगे जहाँ पर एक प्रमुख, वो धर्म के जो पिता भगवान कृष्ण, यदा यदा ही धर्म से मैं धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ, तो वो केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे तो क्या हो जाता है, सब लोग बहुत स्वार्थी हो जाएंगे, बहुत भौतिकवादी हो जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं ना भारत में भी सब लोग सब त्याग दिया, कम से कम दूसरे वो जो तामसिक धर्मों में वो कुछ तो करते हैं लोग, कुछ तो नियमों का पालन करते हैं। उनका उनका नियम बहुत उतना बड़ा छड़ा हुआ नहीं है। तो जैसे मुसलमान लोग कुछ वो नमाज करते हैं, दिन में 7-8 मिनट नमाज करने से ज़्यादा प्रगति नहीं होता आध्यात्मिक पर लेकिन कुछ तो करते हैं वो लोग। हाँ, ये लोग बदमाश इतना बन गए हिंदू लोग कुछ धर्म नहीं, कुछ शर्म नहीं सब। तो ये देवी देवताओं को उपासना करने के कारण है, एक कारण है, अन्य भी बहुत कारण है। तो वैदिक सभ्यता का पतन हो जाता है। तो अभी इस सीजन में सब लोग दुर्गा का पूजा करते हैं, अलग अलग देश, इस देश में अलग अलग भागों में अलग अलग लोग अलग अलग भगवान को बहुत, मतलब अलग अलग देवी देवताओं को भगवान करके मानकर बहुत मानते हैं उसको। जैसे तमिल लोग, उनका भगवान कौन है, मुर्गन, मुर्गा। हाँ, और महाराष्ट्र वाले गणेश को पूजा करते हैं। ऐसे बंगाल में ज़्यादा ये दुर्गा पूजा होता है ना। तो वो लोग दुर्गा पूजा करते हैं। दुर्गा ये शब्द का क्या अर्थ है, दुर्ग शब्द का अर्थ है पोर्ट, पोर्ट मतलब किला। और उसको बना, उसको नियंत्रण करने वाले को दुर्गा कहते हैं। तो ये भौतिक जगत क्या है, ये खिला के समान है, ये सब जीवों को बांध कर रखने के लिए एक खिला है, ये उसका खिला को संभालने वाली दुर्गा है। तो इस खिला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, कि कैसे इस खिले में, ये ऐसा खिला है, सभी लोग सोचते हैं कि वो स्वतंत्र है लेकिन सब लोग बंधे हुए हैं। तो एक विशेष तरह के जेल है ये, जेल जेल हम लोग इस भौतिक जगत को जेल से भी तुलना कर सकते हैं। दुर्गा देवी कौन बन जाती है, वो जेलर बन जाती है। तो ऐसा जेल है, सब लोग बंधे हुए हैं, सब लोग बंधन में हैं, लेकिन फिर भी सब लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही स्वतंत्र है। तो ऐसा किला है, इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो ये कौन है, ये दुर्गा देवी, भगवद्गीता में भगवान वर्णन करते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक। तो भगवान के दैवी शक्ति है, दैवी ऐसा। तो विष्णु पुराण में भगवान के शक्तियों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है, अलग अलग जगह पर उपनिषदों में भी आता है। तो भगवान के शक्तियों के बारे में वर्णन किया, तो विष्णु पुराण में भगवान के शक्तियों को तीन विभाजन किया गया, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाक्य तथा परा अविद्या कर्म संन्याया तृतीया शक्ति रिष्यते। तो परा प्रोक्ता पराशक्ति, सो क्षेत्रज्ञाक्य तथा परा, और जो जीव है वो भी पराशक्ति है लेकिन उसको तटस्थ शक्ति भी कहा गया है। तो अविद्या कर्म संन्याया तृतीय शक्ति रुच्यते, अविद्या ये बहिरंग शक्ति माया शक्ति वो तृतीय शक्ति है, तीसरा शक्ति। ऐसे तीन शक्तियों का विभाजन किया गया, भगवान के अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति के द्वारा पूरा आध्यात्मिक जगत का सृष्टि होता है, या आध्यात्मिक जगत अंतरंग शक्ति से बना होता है, उसको चित शक्ति भी कहते हैं। और वो पराशक्ति भी है, और वहाँ पर सब कुछ भगवान के स्वरूप, भगवान के जो भी वस्तुएं हैं और वहाँ के सभी परिसर और सभी जीव, सब आध्यात्मिक आनंद चिन्मय रसा प्रतिभावित आवेश, उनके कार्यकलाप सब कुछ ये आनंद चिन्मय, उनके लीलाएं सब कुछ ये अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रचलित होते हैं। और भौतिक जगत क्या है, इस भौतिक माया शक्ति से बना हुआ है। तो मम माया भगवान कहते हैं, ये भगवान के माया शक्ति है और इसको अचित शक्ति कहते हैं, या जड़ शक्ति, जड़। तो जड़ शक्ति है ऐसे। तो यहाँ पर और जीव क्या है, तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब जैसे तट में, पानी में हो सकते हो या जमीन पर हो सकते। अंतरंग शक्ति के तो अंतर्गत हम लोग हो सकते हैं या बहिरंग शक्ति के अंतर्गत हो सकते हैं हम लोग, इसलिए तटस्थ बताया गया। तो जब अंतरंग शक्ति के हम लोग अंतर्गत रहते हैं तो हम लोग महात्मा बन जाते हैं। 9वें अध्याय में भगवान, 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। वहाँ पर भी दैवी प्रकृति, तो दैवी प्रकृति, दैवी शक्ति के बारे में वो भगवान कहते हैं। लेकिन वो दैवी शक्ति और ये 14वें श्लोक में जो 7वें अध्याय के माया शक्ति, उसमें अंतर है, वो अंतरंग शक्ति है। तो हम लोग इसको बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। तो वो अंतरंग शक्ति में हम लोग महात्मा बन जाते हैं, और जब तटस्थ ये भौतिक शक्ति माया शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं तो हम लोग दुरात्मा बन जाते हैं। तो ये दुनिया में जो भी लोग, जो भी जीव है, हम सब लोग क्या है, दुरात्मा है। भगवान को, भगवान के विरुद्ध हम लोग मुंह मोड़ लिया है, बहिर्मुख, बोगुण्मुख हो गए। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, नेहरू हो, गांधी हो, ओबामा हो, सब लोग दुरात्मा है। गांधी भी दुरात्मा, हालांकि उसको महात्मा बताया गया। सब लोग दुरात्मा है, चींटी हो या चींटी से लेकर बड़े बड़े देवता, सब लोग दुरात्मा है इस भौतिक जगत में। तो फिर भी इस ये माया शक्ति को, ये जड़ शक्ति है, अचित शक्ति है, फिर भी भगवान इसको भी दैवी शक्ति कहते हैं। इसके लिए क्या कारण है? अंतरंग शक्ति को भी दैवी शक्ति कहते हैं आगे, 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, महात्मानस्तु पार्थ माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। तो और भौतिक शक्ति को भी, ये माया शक्ति को भी दैवी कहते हैं, क्योंकि भगवान के दृष्टिकोण से क्या है, तो कोई अंतर नहीं है माया शक्ति में, जड़ शक्ति में और अंतरंग शक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में कोई अंतर नहीं है, उनके लिए दोनों एक ही है। लेकिन हमारे लिए वो अलग अलग है, क्योंकि हम लोग सब कुछ इस जगत में भगवान से अलग पृथक भावना रहता है, सब कुछ भगवान से अलग देखते हैं हम लोग। भिन्न देखते हैं, इसलिए वो अंतरंग शक्ति योग माया वो महामाया के रूप में इस भौतिक जगत में दुर्गा देवी के रूप में आती है, तो वो एक कारण है। और प्रभुपाद जी वो तात्पर्य में लिखते हैं कि दैवी शक्ति क्यों, हालांकि ये भौतिक जगत जड़ शक्ति है फिर भी दैवी क्यों है, इसके पीछे भगवान के क्या है सुप्रीम विल, भगवान के इच्छा है, या भगवान इसको अध्यक्षता कहते हैं, उसके पीछे भगवान है। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, मेरे अध्यक्षता से यह भौतिक जगत चलता है या माया शक्ति कार्य करती है, तो ऐसे भगवान बोलते हैं, इसलिए वो दैवी है। इसका अर्थ है कि पीछे इसके पीछे इस माया शक्ति के पीछे क्या है दिव्य जो भगवान है, तो वो उसके पीछे है, उनकी अध्यक्षता है, इसके कारण ये दैवी शक्ति है। अंत में भगवान के सभी शक्तियाँ क्या है दिव्य है और आध्यात्मिक है, उनके अंदर कोई भी भौतिक खल्मश नहीं है भगवान के अंदर, लेकिन हम लोग क्योंकि भगवान के इन चीज़ों को इस भौतिक जगत में सभी चीज़ों को भिन्न देखते हैं, इसलिए क्या हो जाता है वो जड़ हो जाता है। तो माया शब्द का वही अर्थ है, भगवान से सब कुछ पृथक देखना। आज सुबह हम लोग वो श्लोक को लेकर रहे थे, रतेर्तम न प्रतीयेत थम विद्या आत्मनो मायम यथा भास यथा थमः, तो भगवान से पृथक समझना चीज़ों को वो क्या है माया है। तो वास्तव में अंत में माया का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं मतलब भगवान के दृष्टिकोण से कोई माया भौतिक चीज़ कोई नहीं है, तो हमारे जो अलग पृथक भावना जो है उसके कारण हम लोग तो अपने आप को भगवान से अलग समझते, तो ये भिन्न प्रकृति क्या करते हैं काम करना शुरू करते हैं हमारे ऊपर, तो इसलिए ये दैवी शक्ति है। और गुणमयी भगवान क्या बोलते हैं इसका एक और स्वरूप क्या है, गुणमयी गुणों से युक्त है ये, तो गुणों से युक्त मतलब तो बौद्धिक जगत में तीन गुण कार्य करती है, तीन गुण कार्य करती है सत्व रज और तमः, ऐसे तीन गुण होते हैं, तो ये तीनों गुण गुणों से माया शक्ति युक्त होती है, या दूसरे शब्दों में ये माया देवी के शक्ति तीन शक्तियां हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा क्या है गुण गुण ये तीन गुण क्या है। तो माया शक्ति इस भौतिक जगत में माता इस भौतिक जगत में उनको माता कहकर संबोधित करते हैं, माता जी है ना, माता जी का पूजा करते हैं। तो माँ क्या करती है गर्भ में बच्चे को स्थान देती है, और वो बच्चे का विकास के लिए शरीर का विकास के लिए जो भी पदार्थ चाहिए वो प्रदान करती है। वैसे ही ये माया देवी जो है दुर्गा देवी इस भौतिक जगत में जीवों को स्थान प्रदान, जो जो जीव भगवान को छोड़कर यहाँ पर स्वतंत्र रूप से भोग विलास करने के लिए इच्छुक रहते हैं उन जीवों को स्थान प्रदान करती है, और उनके अलग अलग रूप की सृष्टि के लिए या विकास के लिए पदार्थ प्रदान करती है। वो पदार्थ मूल रूप में ये तीन गुणों के रूप में रहते हैं सत्व रज तम, ये तीनों गुण को वो मूल रूप में उसको प्रधान कहा गया है, वो प्रधान अन्य 24 तत्वों में प्रकट होते हैं, पांच पांच महाभूत भूमि जल अग्नि वायु और आकाश और मन बुद्धि अहंकार, पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रिया और पांच तन्मात्राएं शब्द रूप स्पर्श गंध रस, तो ऐसे 24 तत्वों में प्रकट होते मूलतः ये तीन गुण होते बस और कुछ नहीं, तो ये भौतिक जगत के माया शक्ति के पदार्थ है, सो एलिमेंट्स ओरिजिनल एलिमेंट्स, तो ये तीन गुण होते सत्व रज। तो इस भौतिक जगत में सब प्रकार के ये तीनों गुण सब जगह फैले रहते हैं, तो जैसे ये कपड़ा, कपड़ा में क्या है सब जगह
आना
धागा है बस, लेकिन ये दागों को ऐसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली तो उसको बुना जाता है, तो कपड़ा बन जाता है। इसमें वो गुण को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही भौतिक संसार में ये तीन गुणों को छोड़कर और कुछ नहीं है। तो यही सब जगह फैले हुए हैं। इसको संस्कृत भाषा में वोतम प्रोतम कहते हैं, सब जगह हॉरिजेंटल वर्टिकल, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते
ताना बाना,
हैं।
ताना बाना।
ताना बाना याद रखना चाहिए मुझे। तो वोतम प्रोतम सब जगह फैले रहते हैं ये, और भौतिक जगत में जो भी विविधताएं हैं सब कुछ इन तीन गुणों के द्वारा सृष्टि होता है। विविधता मतलब आप जाते हैं ना, हम ये मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, ये इनका अलग, इनका अलग स्वभाव, इनका सबका अलग अलग स्वभाव, यहाँ पर अलग अलग रूप, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग कार्यकलाप। सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, पूरा सभी प्रकार के जीव जंतु, सब प्रकार के वृक्ष, पेड़, अलग अलग जगह, भूमि, इन तीनों गुणों का प्रभाव सबके ऊपर रहता है, काल के ऊपर। वास्तव में काल ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी समय भी, हम लोग अलग अलग समय पर क्या अलग अलग गुणों का तो भी यू नो जो प्रभाव होता है। तो ऐसे ये गुण, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तीन रंग होते हैं ना, जो मूल मूलतः तीन रंग होते हैं, तो लाल, पीला और हरा, ऐसे तीन रंग होते हैं। उन तीनों रंगों के मिश्रण से सो हजारों हजारों आप रंग बना सकते हैं। वैसे ही ये तीन गुणों के मिश्रण से सभी प्रकार के विविधताओं का सृष्टि होता है भौतिक जगत में, तो उसको गुण कहते हैं। और तो ये तीनों गुणों, गुण एक और गुण शब्द का अर्थ है तो रस्सी, रोप। तो रस्सी कैसे बनता है आप जानते हैं ना, पहले तीन छोटे छोटे रस्सी होते हैं और वो उनका उन तीनों को बुना कर और बड़ा रस्सी बन जाता है, और बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली हो जाता है वो। तो वैसे ही ये तीन गुण क्या करते हैं, हम लोगों को बांध देते हैं इस भौतिक जगत में। कैसे बांधते हैं, हमारा शरीर क्या है ये तीन गुणों से बना रहता है, वो तीन गुण से 24 तत्व बनते हैं, 24 तत्वों से, और चेतना के ऊपर भी इनका प्रभाव होता है। तो मूलतः चेतना क्या है, वो कृष्ण चेतना है, शुद्ध चेतना, कृष्ण भावनामृत जो कहते हैं, सब लोग कृष्ण भावना भावित है मूलतः शुद्ध चेतना में। तो जब शुद्ध चेतना इन तीन गुणों के संपर्क में आ जाता है तो वो प्रदूषित हो जाता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया भगवद्गीता में, जब बारिश का पानी जो ऊपर रहता है तो वो शुद्ध रहता है, जब मिट्टी से मिल जाता है तो वो अलग अलग रंग में बदल जाता है और वो दूषित हो जाता है। वैसे ही हमारे मूल चेतना है इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर दूषित हो जाता है। तो फिर उस चेतना के अनुसार हम लोग अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करते हैं। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मशु, तो पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मशु। तो जो जीव इस भौतिक जगत में स्थित होकर भौतिक जगत को भोग करने की, प्रभुत्व जमाने की जब इच्छा करता है तो अलग अलग गुणों के संपर्क में आ जाता है, तो फिर अलग अलग प्रकार के शरीर धारण कर लेता है। तो अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रकार के शरीर को तो धारण करता है। तो ये रस्सी के समान कार्य करते हैं, बांध देते हैं जीवों को इस भौतिक जगत में, उसके चेतना को प्रदूषित करके इस भौतिक जगत में बांध देते हैं। तो माया देवी के ये तीन रस्सियां हैं, सो गुणमयी, इसलिए माया देवी को क्या बताया गया, गुणमयी बताया गया। सो मम माया धुरत्यया, ये मेरे जो माया शक्ति है धुरत्य, इसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है बोलते हैं। तो ये रस्सियां इतना प्रबल और शक्तिशाली है, उनको कर पास कर यू नो पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है ना। जो भौतिक इच्छाएं विशेष करके रजोगुण के प्रभाव से ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। रजोगुण का लक्षण क्या है, असीमित इच्छाएं। सतोगुण का लक्षण है वो व्यक्ति बहुत ज्ञान अनुशीलन करने के लिए कोशिश करता है, तो परम सत्य के बारे में जानने के लिए कोशिश करता है। और रजोगुण क्या है? असीमित, बहुत ही इच्छाएं उसके अंदर जागृत हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं ना, काम येषु क्रोधयेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम यवेन। अर्जुन प्रश्न पूछा उन्होंने कि क्यों ऐसा लगता है कि हम लोगों को, हालांकि हम लोग कुछ पाप नहीं करना चाहते, फिर भी हम बाध्य होकर पाप करते हैं। क्या चीज़ है जो हमें बाध्य करता है पाप करने के लिए? तो भगवान, ऐसा होता है ना, हम लोगों को भी अनुभव होता है ना, है कि नहीं? हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम लोग बाध्य होकर कुछ कर बैठ जाते हैं, है ना? तो ये क्यों होता है ऐसे? तो भगवान बोलते हैं कि रजोगुण के कारण हमारे अंदर काम इच्छाएं बढ़ जाते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे पाप करके बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली है। महाशनो महापापमा विद्येनम यवैरिणा। तो माया इन तीनों शक्तियों के द्वारा, तीनों उनके गुणों के द्वारा वह बद्ध जीवों को बांध देती है, और इसके कारण ये पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम बता रहे थे कि ये ऐसा बंधन ऐसा है कि किसी को महसूस नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन सामान्यतः जीव क्या सोचते हैं इस भौतिक जगत में? मैं पूरा स्वतंत्र हूँ। वो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा हो ना, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल सिगरेट का, वो बुद्धू क्या कहता है, वो उस सिगरेट का एडवर्टाइज, आई गेट व्हाट आई वांट, ऐसा बोलता है। तो वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ उसको प्राप्त करने के लिए, उसको वही मिलता है जो उसको नहीं चाहिए। वो क्या है? कैंसर है ना, ब्रिस्टल सिगरेट पीकर। तो ऐसे बुद्धू पूरा दुनिया में सब लोग क्या है? सब बुद्धू है। अज्ञान में सब लोग सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। श्रील प्रभुपाद जी वो भगवद्गीता की भूमिका में वो कहते हैं कि सिर्फ मूर्ख लोग ही ऐसे सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र है करके। तो हम लोगों का अनुभव रहेगा ना, कभी कभी हम लोग बस स्टैंड में खड़े हैं, तो हम जो चाहते हैं वही बस नहीं आता है, सब दूसरा बस आ जाता है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि जो हम लोग इच्छा करते हैं वो आता होता है। तो क्योंकि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, अंत में भगवान ही सिर्फ स्वतंत्र है। वो तो भगवान, वो स्वराट कहा गया ना उनको, तो सभी जीव उनके ऊपर निर्भर है, और सब जीव इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, बंधन में है। तो तीन रूप में बनते हैं वो, कर्म के रूप में, और कर्म से, गुणों से, और काल से बंध जाते हैं हम लोग। काल कर्म गुणादीनों, काल कर्म और गुणों से बंध जाते हैं। तो कर्म के ऊपर गुण होते हैं, क्योंकि गुणों के प्रभाव में हम अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, और गुण के ऊपर क्या होता है? काल होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग गुण बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, फिर जीव उनके प्रभाव में आकर अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ये सब गुणों के बारे में, सभी जीव कैसे अलग अलग जीव गुण और स्वभाव से कार्य करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल है। इसके लिए बड़ा एक्सपेरिमेंट की कोई जरूरत है, लेकिन जो भगवद्गीता में जो भी बताया गया सब प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल, रिजनेबल, हाँ सब ये सब देखते हैं ना हम लोग, अलग अलग प्रभाव के स्वभाव, अलग अलग प्रकार के गुण, विविधताएं। तो लेकिन वैज्ञानिक लोगों को ये सब चीज़ों को पता नहीं है, वो कैसे, क्यों इस सृष्टि में विविधता है, क्यों अलग अलग प्रकार के स्वभाव होते हैं, वो बता नहीं सकते हैं। तो वो लोग बोलेंगे कुछ अलग अलग केमिकल्स है, अलग अलग जीन्स है, अलग अलग क्या है वो, फाइबर्स है, न्यूरॉन्स, तो ऐसे सब ये बकवास है। तो ये अलग अलग, ये माया शक्ति क्या है? दुरत्य है, इसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सिर्फ जो भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं वही इसको पार कर सकते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां थरन्ति ते, जो मेरे शरण में आते हैं वही हम माया को तार करके जा सकते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि सिर्फ भगवान कृष्ण ही माया शक्ति के ऊपर है वो, तो सब लोग माया शक्ति के अंतर्गत है, तो वो स्वतंत्र है पूरी तरह से, वो माया के स्वामी है, वो मास्टर ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो वो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते। कभी कभी बहुत ही ये जो यू नो मायावादी लोग होते हैं ना, मायावादी दार्शनिक लोग, वो लोग कहते हैं जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो हमारे जैसे भौतिक शरीर को धारण कर कर लेकर आते हैं। आज सुबह भी हम लोग वो विकारवाद का चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म का विकार हो जाता है, तो माया शक्ति के प्रभाव से ब्रह्म का विकार होके ये भौतिक सृष्टि का सृष्टि होता है, जीवों में ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वो लोग उल्लेख करते हैं उसको। या जब भगवान इस जब भौतिक जगत में प्रकट हो जाते हैं तो हमारे जैसे भौतिक रूप को धारण करते हैं ऐसे वो लोग। लेकिन वो गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि भगवान भी माया के माया से प्रभावित होते हैं, तो माया भगवान से भी श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि नहीं? भगवान की परिभाषा से अनुसार भगवान सर्वोच्च व्यक्ति है। गॉड मतलब सुप्रीम बींग, असमोर द्वा, उनके समान कोई नहीं है, उनसे ऊपर भी कोई नहीं। इसलिए ये गलत है ये दर्शन। तो इसलिए भगवान स्वामी है, वो माया से कभी बनते नहीं है। इसके तद विरुद्ध हमने वो श्लोक भी उल्लेख किया, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते। तो माया के अध्यक्षता से, सॉरी भगवान के अध्यक्षता से माया शक्ति काम करती है, तो वो स्वतंत्र है। इसलिए हम लोगों को वो इस बंधन से, माया के बंधन से, ये माया के रस्सियों से, गुणों से हम लोग वो मुक्त कर सकते हैं। तो सब लोग बंधे इस जगह, इस यू नो हॉल में जो भी है, सब लोग बंधे हुए हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को छुड़ा सकते हैं? इसलिए नहीं छुड़ा सकते। तो इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ भगवान या उनके जो प्रतिनिधि शुद्ध भक्त होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो हम लोगों को छुड़ा सकते हैं। देवी देवताएं भी हम लोगों को इस बंधन से छुड़ा नहीं, छुटकारा नहीं दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी वो कहते हैं माया मामेव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, देवी देवता भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकते माया के बंधन से। तो प्रभुपाद जी वो पद्म पुराण का भी उल्लेख करते हैं, वो स्वयं भगवान शिव जो शिव जी है, वो माया देवी को कहते हैं, दुर्गा को या पार्वती को कहते हैं। आराधना नाम सर्वे,
विष्णु आराधना परम,
नहीं, वो श्लोक नहीं, वो मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशयः। तो भगवान विष्णु मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो भारत में लोग, वो लोग काशी जाते हैं ना, वाराणसी जाते हैं ना, वो शरीर त्यागने के लिए, वो लोग सोचते हैं कि वाराणसी जाएंगे तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसे सोच के वहाँ पर शरीर त्यागने के लिए पहले ज़माने में जाते थे, आजकल नहीं जाते। आजकल भी थोड़े जाते हैं। नहीं, वो आगे हम बताने वाले तो हाँ, वो सात मुक्ति प्रदान करने वाले स्थानों में एक स्थान है काशी। हाँ, उसको मायापुर भी, मायापुरी कहते हैं ऐसा कुछ, मायापुरी। तो लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन शिव जी क्या बोल रहे हैं? भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो आरंभ में भी हमने कहा ना, देवी देवताओं का पूजा करने का कोई आध्यात्मिक कारण नहीं है, वो मुक्ति भी प्रदान नहीं करने वाले, और हमारा कोई शाश्वत संबंध भी नहीं है उनके साथ। तो ऐसे भी शिव जी के साथ भी हमारा कोई शाश्वत संबंध नहीं, दुर्गा के साथ भी कोई शाश्वत संबंध नहीं। तो दुर्गा देवी तो मुक्ति नहीं देने वाले, वो बांधने वाली है वो है कि नहीं? उसके बारे में हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे बाद में। तो लोग जाते हैं वहाँ पर काशी में, तो शिव जी वो मुक्ति नहीं देते, वो क्या करते हैं? वो भगवान राम के नाम उच्चारण करते हैं खान में, जो वहाँ पर शरीर देखते। तो राम नाम क्या करता है उनको, राम नाम को क्या बोलता है? थारक ब्रह्मक नाम उठा गया ना, तो थारक ब्रह्म नाम, तो वो मुक्ति प्रदान करने वाले राम नाम है। तो ऐसे होता है, शिव जी भी नहीं दे सकते, सिर्फ जो भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं वही माया देवी से मुक्त हो सकते हैं। तो दुर्गा का पूजा करने से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। वास्तव में दुर्गा देवी का कार्य क्या है? सबको बांध देना और सबको मारना, सबको त्रिविध ताप देना। उसके उनके हाथ में त्रिशूल रहता है ना, त्रिशूल, त्रिशूल तो तीन प्रकार के क्लेश दे प्रदान देती है वो। तो तीन, आदि आत्मिका, आदि दैविका और आदि भौतिक। सो आदि आत्मिका, आदि दैविक, आदि भौतिका और आदि दैविका। तो आदि आत्मिका मतलब जो हमारे मन और शरीर से जो हमें क्लेश प्राप्त होता है उसको आदि आत्मिका, और आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों के द्वारा हमें क्लेश प्राप्त हो जाता है। कोई मच्छर करता है या कोई अन्य जीव हमें, कोई अन्य मनुष्य मानव हमें तकलीफ देते हैं। तो और आदि दैविक मतलब बहुत सारा बारिश, बहुत सारा गर्मी, या भूकंप, ऐसे कुछ चीज़ होते हैं ना, उसके द्वारा जो भी हमें तकलीफ होता है उसको आदि दैविक क्लेश कहते हैं। तो ऐसे माया देवी सबको क्लेश देना उनका कार्य है, और सबको मारना, मृत्यु देना। और कई सारे इस जगत में जो भी कष्ट जो आते हैं वो दुर्गा देवी का कार्य है। जीवों को बांध के यहाँ पर बार बार मृत्यु देना उनका, वो उनका कार्य है। तो दुर्गा देवी मुक्ति नहीं प्रदान करते, तो सामान्य जीवों को छोड़िए, उनके भक्तों को भी वो क्या करते हैं, वो मारती है, हाँ, त्रिविध ताप देती है। ये मूर्ख जीव क्या करते हैं, उनका पूजा करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वही सबको मार रही है। है कि नहीं? तो वही सबको तकलीफ दे रहे हैं, तो वो समझते नहीं हैं। तो क्यों ऐसे करते हैं वो ईसाई, वो ईसाई धर्म में वो क्या है ना, सेटन, सेटन करके, शैतान, शैतान नामक एक, वो क्या करते हैं, इस्लाम में भी है सेटन, तो वो शैतान करके, है ना, वो शैतान क्या होता है ईसाई धर्म में, उनको भगवान के स्पर्धी, उनको स्पर्धा स्पर्धा करने वाले समझा गया। तो वो गलत धारणा है, क्योंकि भगवान का कोई प्रतिनिधि करने वाला, भगवान का, भगवान के साथ कोई स्पर्धा करने वाला कोई नहीं होते। तो वो मूर्खता है, क्योंकि भगवान के साथ कोई अन्य स्पर्धा करने वाले होते हैं तो भगवान कैसे बनेंगे वो, है ना, क्योंकि भगवान मतलब उनके समान कोई नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर भी कोई नहीं होना चाहिए। तो वो लोग ईसाई धर्म वाले क्या सोचते हैं, आप क्या है, भगवान का गुणगान करो या पूजा करो, तो आराधना करो, तो भगवान बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और जो उनके स्पर्धालु व्यक्ति है वो शैतान, उनको हरा देंगे, तो फिर हमसे प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन संपत्ति, भौतिक चीज़ प्रदान करेंगे, ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो ये मूर्खता है सब कुछ, क्योंकि भगवान के साथ कोई स्पर्धा करने वाला नहीं होते। तो क्या दुर्गा देवी ऐसे है कि हम लोगों को, हम लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर बांध के रखती है। तो ये एक दृष्टिकोण से वो बहुत ही, प्रभुपाद जी वो एक जगह पर लिखते हैं, दुष्ट माया, दुष्ट माया। माया क्या है, बहुत दुष्ट है। तो क्योंकि जीवों को बहुत सारा कष्ट देते हैं, इस बहुत ही जगत में बांध के रख देते हैं। तो वास्तव में वो एक दृष्ट, वो दुष्ट नहीं, वो भी भगवान के सेविका है, वो भी भगवान के भक्त है। तो लेकिन उनका कार्य जो है वो क्या है, अंग्रेजी में वो बोलते हैं ना, थैंकलेस जॉब। तो उनका कार्य क्या है कि कोई उसको मान्यता नहीं देता या उनको प्रशंसा नहीं करता है, तो आपने बहुत अच्छा किया, हम लोगों को यहाँ पर बांध के रख दिया, हम लोगों को बहुत तकलीफ दिया। तो ऐसे नहीं करते, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो भगवान के पास ऐसे जीव जो जो अच्छे भक्त नहीं हैं, तो वो लोग जाके भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको यहाँ पर बांध के रखते हैं वो। और अंत में जीव अपने इच्छा के कारण इस भौतिक जगत में बंधे रहते हैं। तो वो कार्य क्या करते हैं, भगवान की ओर से वो माया देवी करते हैं। तो इसलिए तो माया देवी का कार्य क्या है, हालांकि वो भगवान के भक्त है फिर भी वो प्रशंसक नहीं है। तो हम लोगों को माया देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें छुटकारा देने के लिए हमें लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को पूर्ण शरणागत होना चाहिए भगवान से, तभी हम लोग माया से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरान्ते। लेकिन इस भौतिक जगत में लोग सब लोग क्या होते हैं, मूढ़ अधम माया पहरत ज्ञान और आसुरीन भावम आश्रिता, ऐसे चार प्रकार के लोग भगवान के शरण में नहीं जाते। तो चारों प्रकार के लोग उनको दुष्कृति कहते हैं या दुरात्मा कह सकते हैं हम लोग, वो माया के प्रभाव में रहते हैं वो। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहरत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। इस जगत में संसार में जो भी लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं जाते, ये वो चार वर्ग, इस चार वर्ग में आना चाहिए वो लोग, मूढ़ अधम माया परत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो ऐसे चार प्रकार के दुरात्मा इस जगत में जा पाए जाते हैं। तो हमने बताया बौद्धिक जगत में ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग दुरात्मा रहते हैं, हाँ वो लोग मूढ़ अधम माया परत ज्ञान और आसुर, ऐसे चार प्रकार में आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, तो तब हम लोग माया के प्रभाव में मुक्त हो जाते हैं। तो दुर्गा का पूजा करने से कोई हमें मुक्ति नहीं मिला, अंत में हम लोग वही दुर्गा देवी हम लोगों को मार के छोड़ देगी, बार बार, एक बार नहीं ऐसे आजीवन भी तकलीफ देगी और अंत में बार बार हमें मृत्यु दंड देते रहेगी। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी?
कैसी वैरायटी प्रभुपाद बोले तीन से कैसे
81 वैरायटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस है ना?
थ्री फ्रॉम थ्री से आता है, थ्री गुणों से।
हाँ या वो तीन गुण और नवदा भक्ति तो 27 हो गए, और इन तीनों गुणों में और तीन विभाजन किया गया, तो मृदु मध्यमा और तीव्र गुणों में भी तो तीन तीन विभाजन किया गया। फिर तीन से गुणा कर 27 × 3 81। तो ऐसे
इन द माइल्ड मीडियम लो माइल्ड एंड इंटेंस
या ऐसे मृदु मध्यमा और तीव्र, तो ऐसे 51 51 81 81 प्रकार के भक्ति। वास्तव में भक्ति शुद्ध और दिव्य है ना, क्योंकि हम लोग गुणों के प्रभाव में रहते हैं, उन गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार के भक्ति होती है। नहीं वो उसके अंदर बहुत ऐसा ईर्ष्यालु भावना रहता है, हम लोग देखते हैं ना भक्तों में भी ऐसे सब प्रकार के लक्षण भी थे हाँ, दूसरों को तकलीफ देना
वो
तमोगुण के भक्ति, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे आने से पहले हाँ हाँ बोले।
दुर्गा देवी इज एंटाइटेड टू गिव अस ओनली द मटेरियल पेन एंड माया, शी इज असाइंड ओनली फॉर दैट बाय द गॉड।
या तो वो तकलीफ भी देते हैं, वो उनका कार्य है, लेकिन वो हमने पता है ना पहले, वो माता है, वो जीवों को स्थान देती है और उनके अलग अलग शरीर धारण करने के लिए पदार्थ प्रदान करती है, हमने बताया ना आरंभ में। और कोई प्रश्न?
पूरी के बाद बारे में बोले तो पूरी या बात काशी में जाके लोग कुछ करते हैं ना मृत्यु होने के बाद,
हाँ हाँ पूरी में
पूरी नॉट आश्रम पूरी नहीं मायापुरी
काशीपुरी
मायापुरी नहीं
काशी काशी में
हाँ बोले क्या
जो लोग मरते हैं उसका जो बच्चा लोग रहता है पेरेंट्स का
श्राद्ध पिंडदान के बारे
में पिंडदान के बारे में तो क्या क्यों मरते हैं और क्या है
तो भगवद गीता में बताया गया पहले अध्याय में इसको पहले अध्याय के अंत में तो कुछ पाप कर्म करने के कारण हमारे पूर्वज पतित अवस्था में है तो उनका उद्धार के लिए ऐसे पिंडदान किया जाता ठीक है। अन्य कुछ प्रश्न ठीक है।
Given a power, then she is made to, give a soul an opportunity to understand that I am very tough to get out, and Krishna is the only solace. With this name, you can come.
Generally. तो इस जगत में क्या दुख क्यों दुख है तो वैदिक धारणा के अनुसार दुख इसलिए है कि ताकि हम लोग इस भौतिक जगत को छोड़कर वापस भगवान के पास चले जाए तो वो भी भगवान की कृपा है करके ऐसे हम लोगों को समझाया जाता है। तो एक बार वो एक ईसाई धर्म के एक दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि इस भौतिक जगत में दुख क्यों है क्योंकि भगवान दयालु नहीं है हा? फिर उसको आगे और भी वर्णन किया दयालु हो सकते हैं लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है वो दुख को दूर करने के लिए तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया लेकिन ये सब गलत है वो भी क्या है इस भौतिक जगत में दुख क्यों है भगवान हम लोग वो भगवान की कृपा है ताकि हम लोग ये भौतिक जगत को छोड़कर जाना चाहिए करके। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है क्यों भगवान ऐसे सृष्टि बनाए हमें समझाने के लिए कोई अन्य तरह प्रकार के समझा सकते थे ना है कि नहीं या क्यों ऐसे जगह बनाया उन्होंने तो वैसे अन्य दृष्टिकोण से भी समझाते हैं जैसे भगवद्गीता भी प्रवचन भगवद्गीता का शिक्षा देकर वो समझाते हैं हम लोगों को सर्वधर्म परित्यज दैवीय ऐसा गुणमयी मम माया दुरते मामे व ये प्रपद्यंते माया में तंतरण ऐसे समझाते हैं लेकिन कुछ जीव वो समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं वो उनका थोड़ा बहुत अच्छी तरह से अनुभव करा के समझाने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा भी जगह बनाया जहाँ पर बौद्धिक दुख नहीं उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं तो हाँ वहाँ पर कोई भौतिक दुख नहीं फिर भी वहाँ पर भी हम लोग संतुष्ट नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग सिर्फ भगवान के संबंध में भगवान के सेवा में ही हम लोग जीव संतुष्ट रह सकता है तो इसलिए ये भगवान की कृपा है ये भौतिक जगत का जो दुख जो है ताकि हम लोग उनका शरण ले सकें ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रील प्रभुपाद की जय संवेद भक्तवृंद की जय।